पृथ्वी और जाह्नवी बस से मानेसर तक का सफ़र कर रहे थे। उन्हें लिफ्ट मिल गई थी। वे बस की एक सीट पर बैठे हुए थे और देखते हैं कि दो सीट छोड़कर ही एक बुज़ुर्ग दंपति बैठा हुआ है। वे दोनों जाह्नवी और पृथ्वी को देखकर मुस्कुराते हैं। वो बुज़ुर्ग महिला अपने पति से कहती है, कितनी प्यारी जोड़ी है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ। उस महिला का पति भी कहता है, जवानी के दिनों में तुम भी इतनी ही प्यारी लगा करती थी। बुज़ुर्ग महिला अपने पति के हाथ पर मारते हुए कहती है, क्या जी, शर्म कर लीजिए, पर पोता पर पोती तक हो गए हैं, ये उम्र है कोई ये सब बात करने की। अपनी पत्नी की बात पर वो आदमी हंसने लगता है। उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर बस में सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है, यहाँ तक कि जाह्नवी और पृथ्वी भी उन दोनों को देखने लगते हैं। उन्हें हंसता देख जाह्नवी और पृथ्वी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वो बुज़ुर्ग महिला जाह्नवी को देखकर कहती है, कहाँ जा रहे हो बेटा? जाह्नवी ने कहा, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं दादी। बुज़ुर्ग दंपत्ति जाह्नवी की बात पर मुस्कुराती हैं और हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी आगे बैठी एक महिला उनसे कहती है, वैसे एक बात पूछूं? जाह्नवी हाँ में सिर हिलाती है। वो महिला कहती है, भाई साहब गुस्से में क्यों बैठे हुए हैं, कोई लड़ाई हुई है क्या आप दोनों की? जाह्नवी हंसने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, लड़ाई नहीं हुई है, उनकी शक्ल ही ऐसी है। पृथ्वी घूरते हुए जाह्नवी को देखने लगता है और जाह्नवी की बात पर वहाँ बैठा हर शख्स हंसने लगता है। उस औरत का पति जो उसके साथ बैठा हुआ था, वो पृथ्वी को देखकर कहता है, कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारी हालत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, शादी के बाद ऐसी ही हालत हो जाती है, अच्छे वाले इंसान की शक्ल बिगड़ जाती है। पृथ्वी हैरानी से उस आदमी को देखकर कहता है, किसकी शादी? जाह्नवी जल्दी से पृथ्वी का हाथ पकड़ती है और उसे पीछे करते हुए कहती है, आप लोग मजाक बहुत अच्छा करते हैं। पृथ्वी घूरते हुए जाह्नवी को देख रहा था तो जाह्नवी ने पृथ्वी के कानों में जाकर धीरे से कहा, चुपचाप बैठे रहो वरना चलती बस से फेंक दिए जाओगे। पृथ्वी ने जाह्नवी की आंखों में देखते हुए गुस्से में कहा, ये आदमी क्या बकवास कर रहा था, किसकी शादी की बात की इसने? जाह्नवी ने कहा, लिफ्ट लेने के लिए छोटा सा झूठ बोला है। पृथ्वी घूरते हुए जाह्नवी को देखकर कहता है, कैसा झूठ? जाह्नवी ने कहा, यही कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। पृथ्वी, महल। अरुणिमा सोफे पर बैठी हुई थी और शाम के खाने के बारे में डिस्कस कर रही थी। उस सर्वेंट ने अपने हाथों में एक लिस्ट ले रखी थी और अरुणिमा के बताए हुए सामान को नोट कर रहा था। तभी अमृता ताई वहां पर आती हैं और कहती हैं, अरुणिमा आज तक आया नहीं दोपहर के खाने में घर पर। अरुणिमा सोफे से खड़ी होती है और कहती है, नहीं ताई, उन्होंने एक सेवक से खबर भिजवाई थी कि वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, रात से पहले नहीं लौट सकते हैं, तो वो दोपहर के खाने में घर पर नहीं आएंगे, लेकिन रात का डिनर साथ में ही करेंगे। अमृता ताई मुस्कुरा देती हैं और हाँ में सिर हिलाती हैं। अमृता ताई उस सेवक को देखती हैं और कहती हैं, जाओ जाकर सामान लेकर आओ। वो सेवक चला जाता है। अमृता ताई अरुणिमा का हाथ पकड़ती है और उसे सोफे पर बैठाते हुए कहती हैं, देखो अरुणिमा, मैं वैसे तो तुम्हारे और आस्तिक के पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा और आस्तिक का रिश्ता सुधर जाए, इसके लिए मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। मर्दों की एक फितरत के बारे में मुझे अच्छे से पता है और मैं तुम्हें वो बता रही हूँ, तुम कोशिश करो, देखना कामयाब जरूर होगी। अरुणिमा हैरानी से कहती है, आप किस बारे में बातें कर रही हैं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। अमृता ताई ने कहा, तुम एक काम करो, आज रात के खाने में तुम आस्तिक के लिए खीर बनाओ बादाम डालकर। अरुणिमा हैरानी से ताई को देखती है और कहती है, खीर बनाओ? लेकिन मैं खीर क्यों बनाऊं, आज तो कुछ ऐसा स्पेशल भी नहीं है कि मुझे खीर बनानी पड़ी। अमृता ताई अरुणिमा की मासूमियत पर मुस्कुरा देती है। वो अरुणिमा के गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, खीर बनाने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं होती है, बल्कि खास इंसान के लिए खीर बनाई जाती है। तुम आस्तिक के लिए खीर बनाओ, क्योंकि आस्तिक को खीर बहुत पसंद है और वैसे भी मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर ही जाता है। देखना, आस्तिक सारा खाना छोड़कर सबसे पहले खीर की डिमांड करेगा, इतना तो जानती ही हूँ मैं उसे, आखिर बचपन से पाला जो है। अरुणिमा कुछ सोचती है और फिर हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है ताई, मैं आज उनके लिए खीर जरूर बनाऊंगी। अरुणिमा किचन में खड़े होकर आस्तिक के लिए खीर बना रही थी। आस्तिक के जीवन की सच्चाई जानने के बाद अरुणिमा को उन चारों भाई बहनों से हमदर्दी हो गई थी, आखिर उनका बचपन ऐसा दर्द भरा जो था। लेकिन फिर आस्तिक का उसके साथ जो व्यवहार है उसे याद करके अरुणिमा अपने मन में कहती है, कैसे इंसान है ये राजा साहब, जिन्होंने खुद अपने जीवन में इतनी तकलीफ सही है, वो कैसे दूसरे इंसान को इतनी तकलीफ दे सकते हैं? क्या उन्हें मेरा दर्द नजर नहीं आता? उन्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती है? दिखाई कैसे देगी, तकलीफ तो इंसानों को दिखाई देती है और राजा साहब तो एक मॉन्स्टर है। खीर बन चुकी थी। अरुणिमा खीर को एक दूसरे बर्तन में पलट रही थी, तभी उसकी कुछ बूंदें अरुणिमा के कपड़ों पर गिर जाती हैं। अरुणिमा खीर को ढक देती है और अपने कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली जाती है। अरुणिमा के जाते ही किचन के दरवाजे पर एक आहट आती है। कोई शख्स किचन में दाखिल होता है। वो धीरे से खीर के बर्तन को उठाकर उसमें कुछ डाल देता है और इसी के साथ उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। रात का वक्त, खाने की टेबल पर सब लोग आ चुके थे और अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। आस्तिक भी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। अरुणिमा एक सर्वेंट के साथ डाइनिंग टेबल सेट कर रही थी। तभी आस्तिक का ध्यान अमृता ताई की कुर्सी पर जाता है और वो कहता है, ताई कहाँ है, अभी तक खाना खाने क्यों नहीं आई? तभी एक सर्वेंट कहता है, राजा साहब मैं गया था उन्हें बुलाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कोई जरूरी काम कर रही हैं, आप लोग खाना खाना शुरू कर लीजिए, वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। आस्तिक खामे सिर हिलाता है और सब लोग अपने अपने प्लेट में खाना निकालने लगते हैं। जब से अमृता ताई आई है तब से अरुणिमा को नीचे जमीन पर नहीं बैठना पड़ता है, वो आस्तिक के साथ बैठकर ही खाना खाती है। किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन प्रणाली को ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि ये जगह पहले उसकी थी और अब अरुणिमा उस जगह पर बैठी है और यही बात प्रणाली की आंखों में चुभती है। लेकिन कीर्ति वहां बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे ऐसा मुस्कुराता देख आस्तिक कहता है, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो?